अध्याय 12। चीन के साथ युद्ध से जापान की पराजय तक जापान का आंतरिक विकास 1894 से 1945। चीन एवं जापान के बीच हुए युद्ध 1894 से 1895 के बाद की आधी शताब्दी में जापान में कई महत्वपूर्ण एवं आश्चर्यजनक घटनाएं घटी, लेकिन ये उतनी विलक्षण नहीं थी जितने इससे पूर्व के 40 वर्षों में सामने आने वाली घटनाएं थी। इसके अलावा इन घटनाओं और परिवर्तनों ने विश्व के देशों का इतना अधिक ध्यान नहीं आकृष्ट किया जितना कोमोडोर पेरी के आगमन के बाद के परिवर्तनों अथवा 1894 के बाद के 50 वर्षों में विदेशी क्षेत्रों पर जापान के आधिपत्य ने किया। लेकिन इनकी ही तरह ये परिवर्तन भी पर्याप्त महत्वपूर्ण थे। वे पेरी के आगमन के बाद के परिवर्तनों की अपेक्षा कम क्रांतिकारी थे। ये इतने अधिक चौंका देने वाले नहीं थे जितने जापान के समुद्र पार के प्रदेशों की विजय थी, लेकिन काफी हद तक प्रथम काल के इन परिवर्तनों ने ही बाद के परिवर्तनों को संभव बनाया। इन 50 वर्षों में जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं और उसके विलक्षण प्रादेशिक विस्तार को वहां के आंतरिक जीवन से अलग करके नहीं समझा जा सकता। 1894 के बाद की एकाध पीढ़ी में जापान में जो परिवर्तन हुए वे मुख्यतः इससे पूर्व के 40 वर्षों से चली आ रही श्रृंखला की ही एक कड़ी थे। इन महत्वपूर्ण दशाब्दियों में मूलतः जापान की संस्कृति में चीनी सभ्यता की अपेक्षा कम परिवर्तन हुए थे। जापान की क्रांति के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह थी, इसका संचालन उच्च वर्ग द्वारा हुआ था और देश में स्थापित ढांचे और आदर्शों को अधिक परिवर्तित किए बिना ही यह कार्य संपन्न किया गया। इसलिए यदि केवल सतही निरीक्षण किया जाए तो यह उतना अस्पष्ट प्रतीत नहीं होता। पहले से चले आ रहे राजा के पद को कायम ही नहीं रखा गया, अपितु उसे और सशक्त बनाया गया। कुछ प्राचीन परिवार जैसे फ्यूजीवारा और तोकुगावा शक्तिशाली बने रहे। सम्राट के प्रति जो जापान का प्रतीक था, निष्ठा को बढ़ावा दिया गया और समाज की आधारभूत इकाई परिवार को सुरक्षित रखा गया। लेकिन तब तक जापान 20वीं शताब्दी के विश्व में स्थान नहीं बना पा सकता था जब तक कि वह क्रांति के प्रभाव को सिद्ध न करे। उस समय विश्व में पाश्चात्य सभ्यता गैर पश्चिमी राष्ट्रों को अत्यधिक प्रभावित कर रही थी। इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप सर्वत्र परिवर्तन हो रहे थे। इसके अलावा पाश्चात्य संस्कृति में स्वयं भी तेजी से बहुत परिवर्तन आ रहे थे। इसलिए गैर यूरोपीय देशों में दुतर्फा क्रांति आ रही थी, एक तो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण और दूसरे संस्कृति के स्वयं भी क्रांति की प्रक्रिया में से गुजरने के कारण। इनमें से अधिकांश परिवर्तन वस्तुतः अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था एवं सामाजिक ढांचे के क्षेत्र में हुए। चिंतन एवं विचारधारा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए वे शीघ्र नहीं दिखाई दिए, लेकिन वे महत्वपूर्ण थे। और यदि हम जापान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें उन पर भी ध्यान देना होगा। आगे इन्हीं परिवर्तनों पर विचार किया जाएगा। सुविधा की दृष्टि से हम इन परिवर्तनों पर क्रम से और पृथक पृथक विचार करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि ये परिवर्तन वस्तुतः इस क्रम से घटित नहीं हुए थे। ये परिवर्तन एक साथ एक ही प्रक्रिया में घटित हुए तथा इन्होंने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। साथ ही इन पर राष्ट्र के अतीत की उपलब्धियों का भी प्रभाव पड़ा। जापान का पूर्णतः सही और सूक्ष्म चित्र शब्दों या फिल्मों में उतार सकना संभव नहीं। अन्य देशों के जीवन के समान यहाँ के राष्ट्रीय जीवन की भी अनेक विशेषताएं रहीं, जिनमें से कुछ पृष्ठभूमि में रहते हुए भी अविभाज्य रूप से साथ साथ चली। आर्थिक विकास, जनसंख्या। सन 1894 से 95 के बीच जो चीन जापान युद्ध हुआ उसके बाद की अर्ध शताब्दी में जापान की सर्वाधिक स्पष्ट एवं प्रमुख आर्थिक विशेषता वहां की जनसंख्या में वृद्धि थी। पैरी के आगमन के समय संभवतः जापान के द्वीपों की जनसंख्या 2 करोड़ 70 लाख से अधिक न थी। 1873 तक यह लगभग 3 करोड़ 50 लाख तथा 1893 तक बढ़कर 4 करोड़ 10 लाख हो गई थी। सन 1938 तक जनसंख्या तेजी से बढ़कर 7 करोड़ 20 लाख हो गई। इस समय तक वृद्धि की वार्षिक दर लगभग 10 लाख तक पहुंच चुकी थी। दूसरे शब्दों में सन 1935 से पूर्व के 70 वर्षों में वहां की आबादी दुगनी हो गई थी और 1935 के पूर्व के 40 वर्षों में वहां की आबादी में 3/4 की वृद्धि हुई थी। यद्यपि जनसंख्या में यह वृद्धि कुछ चौंका देने वाली थी, परंतु यह अकेला ही उदाहरण नहीं था। सन 1871 से पूर्व के 60 वर्षों में इंग्लैंड और वेल्स की आबादी लगभग 2.25 गुनी बढ़ी थी और 1911 के पूर्व के 40 वर्षों में भी, जबकि अभी औद्योगिकरण के आरंभिक प्रभावों का ही अनुभव किया गया था और जनसंख्या की वृद्धि में स्थिरता के लक्षण दिखाई देने लगे थे, वहां की आबादी में 60% की वृद्धि हुई थी। सन 1936 में बेल्जियम, इंग्लैंड और वेल्स जैसे अत्यधिक औद्योगिकृत देशों की अपेक्षा जापान की प्रति वर्ग मील जनसंख्या कहीं कम थी। जापान की आबादी जावा के समान बहुत सघन भी न थी, क्योंकि जावा में भी इसी प्रकार तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी और यह भी एक ऐसे द्वीप में जहाँ के लोग मुख्यतः कृषिजीवी थे और जहाँ औद्योगिक प्रगति नगण्य थी। जापान की जनसंख्या में वृद्धि की समस्या अन्य घनी आबादी वाले द्वीपों की अपेक्षा अधिक गंभीर थी। यहाँ की आबादी चीन की अपेक्षा 4 गुनी और भारत की अपेक्षा 2 गुनी घनी थी। दोनों ही घनी आबादी वाले कृषि प्रधान देश थे। इसके अलावा इन द्वीपों की भूमि पर्वतीय थी और इसलिए जापान के भूप्रदेश का बहुत थोड़ा भाग ही कृषि योग्य था। जीवन निर्वाह के लिए बढ़ते हुए दबाव के कारण अधिकाधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अनुमान के अनुसार वहाँ की भूमि के पांचवें भाग से अधिक का उपयोग नहीं हो सकता था और 1931 तक वहाँ की भूमि के केवल छठे भाग तक का ही उपयोग किया जा सकता था। भूमि के अवशिष्ट 4% का अधिकांश ऐसा था जिसमें खेती करने की लागत उससे प्राप्त होने वाली उपज से बहुत मुश्किल से ही पूरी पड़ती थी। प्रति एकड़ उपज को यथासंभव बढ़ाने के लिए श्रम प्रधान कृषि की गई और खाद का प्रचुरता से उपयोग किया गया। परंपरागत मलविष्ठा, मछली और वनस्पतियों से निर्मित खाद के साथ साथ रासायनिक खाद का भी उपयोग किया जाने लगा। सरकार ने भी किसानों के हित को ध्यान में रखकर कृषि के सर्वोत्कृष्ट आधुनिक वैज्ञानिक साधनों का उपयोग शुरू किया, लेकिन जमींदारी तथा भू स्वामित्व की प्रथा इस प्रगति में बाधक थी। जापान को चावल के उत्पादन में कोरिया का मुकाबला करना था और कोरिया में उत्पादन की लागत कम थी। जापान अपने देश के लिए पहले की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में रासायनिक खाद का निर्माण कर रहा था, लेकिन इसका उत्पादन पोटाश और फॉस्फेट के आयात पर निर्भर था। कृषि योग्य भूमि के अनुपात में वहाँ की जनसंख्या जावा, बेल्जियम और नीदरलैंड से भी अधिक घनी थी और साथ ही इंग्लैंड तथा वेल्स से भी कुछ अधिक थी। अमेरिका की कृषि योग्य भूमि के अनुपात में यहाँ की आबादी 12 गुनी से भी अधिक घनी थी। लेकिन इसकी अन्य कुछ अपनी विशेषताएं थीं। यहाँ की अधिकांश ऐसी भूमि जिस पर कृषि संभव नहीं थी, वनों के विकास के लिए उपयुक्त थी और जापान ने अपनी आवश्यकता के लिए इमारती लकड़ी का उत्पादन शुरू किया। वर्षा एवं जलवायु वहाँ की भूमि के अधिकतम उपयोग में सहायक। आसपास का समुद्र मछलियों से भरपूर था। जापान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि उसका पूर्वी एशिया के जलमार्गों पर नियंत्रण था और वाणिज्य की दृष्टि से भी उसकी स्थिति अच्छी थी। चीन में अभी औद्योगिक दृष्टि से बहुत थोड़ी प्रगति हुई थी, लेकिन इसलिए वह औद्योगिक दृष्टि से उन्नत अपने पड़ोसी देश के माल की खपत के लिए एक बड़ा और अच्छा बाजार था। इसके अलावा चीन के समीप होने तथा स्वदेश में सस्ती मजदूरी उपलब्ध होने के कारण वह पश्चिम के अन्य विनिर्माता देशों की अपेक्षा अधिक लाभप्रद स्थिति में था। लेकिन इन सुविधाओं की कुछ परिसीमाएं भी थीं। औद्योगिकरण के लिए कुछ आवश्यक माल का जापान में अभाव था, जिनमें लोहा और पेट्रोल प्रमुख थे। चीन के लोग जापान में निर्मित माल खरीदने के बहुत अधिक इच्छुक नहीं थे। राष्ट्रीयता की उग्र भावना के कारण चीन ने जापान की बढ़ती हुई मांगों के विरुद्ध कई बार आक्रोश प्रकट किया तथा जापानी माल का बहिष्कार किया। समय आने पर, और वह समय दूर नहीं था, चीन का भी औद्योगिकीकरण हो सकता था और वह स्वयं अनेक ऐसी वस्तुओं के निर्माण में समर्थ हो सकता था जिन्हें जापान उन्हें बेचता था। 1930 के बाद इस बात का आभास मिलने लगा था कि जापान के साथ उसके सबसे लाभप्रद निर्यात के सामान अर्थात सूती कपड़े के निर्माण में चीन उसकी प्रतिस्पर्धा में आ खड़ा होगा। इधर जापान में प्रतिवर्ष आबादी में 10 लाख की वृद्धि हो जाती थी। इनमें से प्रत्येक को और अधिक वस्तुओं की आवश्यकता होती थी, और जहाँ एक ओर उसे कुछ लाभ होता था तो वहाँ दूसरी ओर साथ ही उसे कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था। इन दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए लाखों लोगों के बहिर्गमन का एकमात्र संभाव्य मार्ग अवरुद्ध हो चुका था। अब जापानियों ने कहीं भी बड़ी संख्या में उत्प्रवास का प्रश्न ही नहीं था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा कनाडा और अमेरिका के उर्वर प्रदेशों को ईर्ष्यापूर्ण दृष्टि से देखा, जहाँ के प्रदेश उसके अत्यधिक घने बसे हुए प्रदेशों की तुलना में रिक्त से थे। जिस समय जापान अपने द्वारा ही अपने ऊपर आरोपित पार्थक्य का शिकार था, उसी समय इन देशों पर गोरी जातियों के लोगों ने आकर प्रभुत्व जमा लिया। इन प्रदेशों में प्रथम आगंतुक होने के कारण इन लोगों ने अपने प्रदेश में जापानियों के प्रवेश को रोकने के लिए अपने समुद्र तट पर पूरी चौकसी रखी। अपनी आबादी के विकास के लिए जापानी दक्षिणी अमेरिका की ओर आकृष्ट हुए, लेकिन वहां भी उन्हें उम्मीद कम ही दिखाई दी। यदि वे अपने निकटवर्ती एशिया महाद्वीप में प्रविष्ट होते हैं तो उन्हें अपने ही तरह के समर्थ किंतु निम्नतर जीवन स्तर वाले लोगों के साथ होड़ में खड़ा होना पड़ेगा। इसके अलावा जापान के लोग अपने देश से दूर जाने के भी इच्छुक न थे। सन 1936 में केवल 10 लाख के लगभग जापानी ही स्वदेश से बाहर थे, और इनमें से भी आधे से अधिक लोग मांचुकुओ तथा इस कठपुतली राज्य में पट्टे पर लिए गए प्रदेश में बसे थे। बाकी लोगों में से 2.5 लाख के करीब अमेरिका और हवाई द्वीप में थे तथा 2 लाख के लगभग ब्राजील में थे। लेकिन जापान को वस्तुतः इस उत्प्रवास से कुल मिलाकर 10 लाख से भी कम लोगों से राहत मिलती थी, क्योंकि सन 1930 तक लगभग 4 लाख कोरियाई जापान में प्रविष्ट हो चुके थे। कोरिया की आबादी जापान की अपेक्षा भी अधिक घनी थी। यहाँ के रहन-सहन का स्तर भी काफी नीचा था, और औद्योगिकीकरण के अभाव में निकास की बहुत कम संभावनाएं थीं। इसके अलावा जिस पैमाने पर खास जापान से लोग बाहर जाकर बस रहे थे, उससे कहीं अधिक बड़े पैमाने पर कोरिया के लोग मांचुकुओ और जापान में जाकर बस रहे थे। कालांतर में स्वेच्छया, परिवार नियोजन और फलतः छोटे छोटे परिवारों के कारण तथा विवाह की आयु में विलंब द्वारा जनसंख्या में वैसी ही स्थिरता आने की संभावना थी। जैसी ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका में आने वाली थी। यह तो बाद की बात थी और तब तक कुल जनसंख्या के 9 करोड़ तक पहुंच जाने की संभावना थी। फिर निश्चय से यह पूर्वानुमान लगाना भी कठिन था कि इस बीच कुछ अप्रत्याशित घटनाएं इस प्रवृत्ति को तीव्रतर कर देंगी या रोक देंगी। इसी बीच जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि के बावजूद 1930 में बड़े पैमाने पर युद्ध और विस्तार का कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व तक जापान अपने देश की अधिकांश जनता के रहन-सहन के स्तर में काफी कुछ सुधार कर रहा था। इसके लिए उसने कुछ अंश तक देश में सुलभ अपने खाद्य संसाधनों का ही उपयोग किया। अधिकांशतः वह स्वदेश में उपलब्ध खाद्य सामग्री का ही बखूबी उपयोग कर रहा था। वह कुछ चावल मुख्यतः कोरिया से तथा चीनी मुख्यतः फार्मोसा से आयात करता था। लेकिन अधिकांश चावल, जो जापान का महत्वपूर्ण भोजन है, वह अपनी ही भूमि में पैदा करता था। वह अपने निकटवर्ती समुद्रों से तथा उससे भी आगे प्रशांत महासागर के प्रदेशों से इतनी अधिक मात्रा में मछलियाँ पकड़ता था जो उसके अपने देशवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद निर्यात के लिए भी बच रही थी। वह अपने देश में प्रभुत मात्रा में कच्चे रेशम का भी उत्पादन करता था। यह वहाँ के अत्यधिक व्यस्त कृषक वर्ग का एक अतिरिक्त व्यवसाय था। सामान्यतः जापान पर उत्पादित कच्चे रेशम का 3/4 भाग निर्यात कर दिया जाता था, जिसमें से 90% भाग अमेरिका को भेजा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका ने अपने वैभव काल में प्रवेश किया तो वहां रेशम की मांग बहुत अधिक बढ़ गई। जापान इसका अपने निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या के समाधान के लिए उपयोग कर रहा था। 1929 से 40 के मंदी के दिनों में अमेरिका में रेशम की मांग एकदम घट गई। फलस्वरूप जापान में निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में भी अत्यधिक कमी आ गई। इसका लाखों जापानियों पर बहुत अधिक अनर्थकारी प्रभाव पड़ा। कृषि प्रधान इलाकों में उन किसानों की आय में अत्यधिक कमी हो गई जो अपनी आजीविका में वृद्धि के लिए रेशम व्यवसाय पर निर्भर थे। अब जापान ने अपना ध्यान रेयन उद्योग की ओर दिया और उसके उत्पादन में वह विश्व के अन्य देशों से आगे निकल गया। लेकिन इससे उन लोगों को कोई तात्कालिक लाभ न हुआ जिनकी आजीविका रेशम व्यवसाय पर निर्भर थी। इसके फलस्वरूप विशेषतः कृषक वर्ग को जिस संकट का सामना करना पड़ा उसमें मंदी के अन्य प्रभावों के कारण और वृद्धि हुई। यह भी जापान के मंचूरिया अभियान का एक मुख्य कारण था। जापान की सेना में अनिवार्य भर्ती की योजना के अंतर्गत कृषक वर्ग में से अनेक लोग आए। उन्हें अपने परिवार के कष्टों का अनुभव था और अपने अधिकारियों को इस असंतोष के बारे में सूचित किया। मध्य एवं निम्न स्तर के अधिकारी ही मुख्य रूप से मंचूरिया पर बड़े पैमाने पर आधिपत्य जमाने के लिए उत्तरदायी थे। उन्हें आशा थी कि जापान चीन के उत्तर पूर्वी प्रांतों के प्राकृतिक साधनों से लाभ उठा सकेगा और फलस्वरूप जापान के दलित वर्ग पर से आर्थिक दबाव कम हो जाएगा और ऐश्वर्य के नवीन युग का उदय होगा। ये जापान के विस्तार के प्रमुख कारण तो नहीं, परंतु गौण कारण अवश्य थे।